कैसे मर गया? वो पछाड़ खाती हुई गिर गई और चिल्लाने लगी, रोने लगी, विलाप करने लगी। थोड़ी देर के बाद में विलाप करते करते जब थोड़ी सी कम रोना हुआ तो बैलिया ने कहा, इस सर्प ने तुम्हारे लड़कों को बिना कारण काटा है, अब कहो इसको दोटी बोटी काट करके जला करके खत्म कर दो। उसने ध्यान नहीं दिया। फिर उसने कहा, फिर कहा तो उसने कहा, जो बेटा एक बात करो, इसके जलाने से मार डालने से हमारा लड़का जीवित हो जाएगा? नहीं तो फिर मारने की जरूरत क्या है? अरे इसके भी तो मैया होगी, इसकी भी तो स्त्री होगी, तो वो तो रोएंगे, जैसे आज मैं अपने लड़के के लिए रो रही, इसको मत मारो, छोड़। फिर दूसरे को काटेगा, यह खल जीव है, बिना कारण दूसरे को काटेगा। तो दूसरे को काटा नहीं, इतने दिनों से इसको काटा नहीं, आज ही क्यों काटा? इसी बच्चे को काटा क्यों? तुमको क्यों नहीं काटा? दूसरों को क्यों नहीं काटा? कहे नहीं, हम तो इसे जरूर मारेंगे और मार करके इसे जला देंगे। तो सर्प कहता है, जिसे हमारा इसमें क्या दोष है? तो तुमने काटा इसको? तो हमने काटा, हमको काल ने कहा इसलिए काटा। तो कहता है कि यदि कोई कहे कि इसको मार डालो तो उसे मार डालोगे, तो दोनों के लिए सजा होगी, तुम बच करके नहीं जा सकते। उसने कहा है इसलिए मैंने उसको मर्डर किया, तू बचेगा नहीं, वो भी जाएगा, वो भी जाएगा। जिसने कहा है, जो प्रेरक है, जिसने किया, दोनों को दंड भोगना पड़ेगा। इतने में काल आ गया, अरे सर तू ऐसा झूठ क्यों बोलता है? मैंने क्या किया? पूर्व जन्म में इसने ऐसा ही किया था, इसका फल ही सांप बन करके आया और उसको काटा, इसमें हमारा काल का क्या दोष? हमने तो जैसा किया था उसका फल वैसे ही दिलवा दिया। तो जो कुछ भी आदमी सुखी और दुखी होता है, इसमें दूसरा इसका हेतु नहीं है, हम ही अपने कारण उसके दोषी होते हैं। इसलिए यदि हम पाप न करें तो फल भी नहीं भोगना पड़े। किसी का लड़का मर जाता है, हाय हमने तो कोई बुरा काम नहीं किया, किंतु पहले जन्म में तूने क्या किया, ये विचार नहीं कर। आजकल के लड़के, नवयुवक नवयुवतियां तो ये सब मानने के लिए तैयार नहीं है, किंतु जो जैसा करेगा वैसा उसको भरना पड़ेगा, वह संभावी। इसलिए खोटा काम नहीं करना चाहिए। आजकल सफेद आलू चलता है, सफेद आलू जानते हैं? अंडा, अंडा खाना आजकल वो आलू की तरह में चल रहा है, उबल करके बेच रहा है ट्रेनों में, बसों में, सब जगह। अजीत जी, ये पाप नहीं है तो और क्या पाप हो सकता है? तो तुम्हारी मैया का भी तो तुम अंडा निकाल करके पेट से, और तू तो खा लेगा। खाने वाले हैं ऐसे सब दुष्ट लोग सब। तो इसलिए भगवान का यदि भजन करना है, बुद्धि शुद्ध रखना है, प्याज लहसुन और जो गंदी चीजें हैं, शराब पीना, सिगरेट इत्यादि पीना, यहाँ तक कि पान तंबाकू भी लेना, ये सब चीजें नहीं लेनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में जैसा निर्देश किया है ऐसा सब लेना चाहिए। खबरदार इन सब चीजों से दूर रहे, जुआ पासा ना खेले, लॉटरी में मत लगाए, जुआ खेलने में सर्वनाश हो जाएगा। दूसरों की स्त्रियों को अपनी माँ बेटी के समान समझो, कभी भी बुरी नजर न दो, हिंसा वृत्ति न रहे, पाप मत करो। धर्म और भक्ति तो बहुत आगे की बात है, पहले भक्ति तो हो, यदि ऐसा होगा तो धीरे धीरे उसमें धर्म की प्रवृत्ति जगेगी। और जब गंदे ही विचार पहले से ही यदि हो रहे हैं, आजकल स्कूल कॉलेज में क्या होता है? भगवान नाम की कोई चीज नहीं, गीता रामायण का और ये सब का पाठ का कोई व्यवस्था नहीं। मुसलमानों के समाज में ऐसा है, वहां पर वो कुरान का पाठ प्रत्येक बच्चों के लिए जरूर करना पड़ेगा, कलमा पढ़ना पड़ेगा। किंतु हमारे समाज में बूढ़े हो गए किंतु गायत्री नहीं जानते, न कोई दीक्षा लिया है, न मंत्र की कोई बला है, आप ये सब कोई की जरूरत नहीं है। जैसे इच्छा तैसे खाते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, और बूढ़े होते हैं तो पागल हो जाएंगे। इस तरह से हमारे यहाँ कोई शिक्षा नहीं। कोई भी क्रिश्चियन होगा अंततः शुक्रवार को, गुड फ्राइडे को जरूर जाएगा वहां, اپنے سب چمے جائے گا. آج یہاں پر 7 دنوں کے لیے اعلان کیا ہوا ہے کتنے آدمی آتے ہیں. مسلمان لوگ جب عیدگاہ اور یہاں پر نماز پڑھنے جاتے ہیں نا, کچھ بھی نہیں, کوئی رنگ ڈھنگ کوئی تماشا نہیں, اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں اور اس میں ایک ساتھ میں 1,00,000 آدمی 2,00,000 آدمی بیٹھتے ہیں. ہمارے یہاں تو کتنا منورنجن کی باتیں, کتنے کی لیلا کتھائیں ہیں, کیرتن ہے, کتنا کیا ہے, کنتو اس میں وشیش کر کے نوجوک تو ایک بھی نہیں آئے گا, وہ کبھی نہیں آ سکتے. ریٹائرڈ لوگ ہیں وہ آئیں گے, اور جسے اب دیش اور راشٹر بننا ہے وہ تو کھیلوں کے میدان میں اور جہاں پر کی شراب کا بوتل اور یہ سب رہے گا, یہاں پر مار کاٹ یہ سب رہے وہاں پر جائیں گے. اچھی اچھی شکشائیں نہ تو اسکول کالج میں ہوتی ہے اور نہ تو باہر وہ سیکھیں گے, اس لیے ان کے اندر میں کسی پرکار کا یہ سب پربھاؤ نہیں پڑتا ہے, سنسکار ہی نہیں ہوتا ہے. تو یہ سب بھکتی کی باتیں کیا سمجھیں گے. اس لیے اب ہندو لوگ کرمش کا انڈونیشیا میں ہندو تھے وہاں سے بھگ کر کے چلے آئے, وہاں پر ہو گیا اندراس. کیسپین سی جس کا نام ہے اٹلی کے پاس میں یورپ میں, کیسپین کشیپ ریشی کا آشرم وہاں تھا, آج وہاں پر ایک ہندو نہیں بھگ کر کے آئے. افغانستان, بلوچستان, پاکستان, یہ ہمارا پہلے یہ سب نہیں تھا, یہ بھارت کا انگ تھا, یہ کٹ گیا وہاں پر اب ہو گیا پاکستان. ایسٹ بنگال جو تھا اب وہاں پر ہو گیا بنگلہ دیش مسلمانوں کا, ہندو لوگ جو تھے مار کاٹ کر کے ختم کر دیے گئے, استریوں کو قتل کر دیا گیا, بچوں کو ان کے سامنے کاٹ دیا گیا. ایک رہا سری لنکا تھا, لنکا کو بھی الگ کر دیا گیا, وہاں پر کچھ ہندو بھائی لوگ رہتے تھے تو ان کو بھی جیسا ہو رہا تھا آپ لوگ پیپر میں دیکھتے ہوں. کچھ دن ایک ایسا آئے گا نہ جانے کیا ہوگا, پنجاب کی بھی استھتی تو ایسی دیکھتے رہے نا, وہاں سے ہندو لوگ بھگ کر کے اور پھر ادھر میں آئیں گے, ادھر سے دکشن کا بھاگ کٹ جائے گا, رہیں گے کہاں ہندو لوگ. پھر یہاں پر دھیرے دھیرے مسلمان لوگ تو وہ کراتے نہیں ہیں, کیا کرانا ہے نا, سنتان بند کرنے کے لیے نسبندی کرا رہے ہیں مسلمان لوگ, کرسچن لوگ نہیں کرائیں, ہندو لوگ کرا رہے ہیں. کچھ دنوں کے بعد میں ایک تو ناستک ہو رہے ہیں جنم لیتے ہی, اور دھیرے دھیرے ہندوانی سب ختم ہوئی, کسی کے سر پر چوٹی نہیں دیکھیں گے. آج کل لڑکیوں کو دیکھتے ہیں یہاں تک کا کیس, پورا کیس نہیں, یہاں تک کٹا کر کے فراک, نہ کہ کیا فراک میں نے میڈپ ہوتا ہے, نہ کہ فراک نہ یہ کیا پہنتی, یہاں کا ڈریس انگلینڈ میں امریکہ میں پہنتے ہیں لوگ, اور چوٹی پہن رہے ہیں, جنیو پہن رہے ہیں, بھگوان کا بھجن کرتے ہیں. اور ہم لوگ کیسے گئے بیتے جی, گیتا کس کی بنائی ہوئی, آج کا کوئی نوجوان کس کا اتر ہی نہیں دے سکتا, بھاگوت کیا ہے یہ سب نہیں بتلا سکتے. کچھ دنوں کے بعد میں مسلمانوں کی سنکھیا بڑھ جائے گی, عیسائیوں کی سنکھیا بڑھ جائے گی, اور پھر ہم لوگ کو رو کر کے ایک قدم رہنے کے لیے استھان نہیں بچ جائے گا یعنی آج ہم نہیں چیتتے ہیں. یعنی آج کا سماج جیسا بھی سنکھل چل رہا ہے ٹائپ چلتا رہا, ہمارے لڑکے لوگ ایسے ہی چلتے رہے, اور آپ لوگ اس پر دھیان نہیں دیں گے. ابھی جو کچھ ہو رہا ہے ہونے دو, پینٹ تو پہنی رہے ہیں, وہ نیکٹائی میں نے کیا, وہ عیسائی کا جو کرس ایسے ان کو دیا گیا تھا نا سولی جیسے صاحب کو, تو وہ اس کا وہ چن ہے. گلے میں تلسی مالا نہیں پہنیں گے, جس کے پہننے سے تینوں لوگ بنے گا. گنگا کا پانی نہیں لیں گے, اس کو سادھارن جل سمجھیں گے. سالگرام کو اور ٹھاکر جی کو پتھر اور لکڑی سمجھیں گے, ان کی ضرورت نہیں ہے. آج کل کے لڑکے لڑکیوں کو اور لڑکیاں لڑکوں کو دیکھنے کے لیے بہانہ کھوجیں گے, جنماشٹمی کے سمے میں بڑی بھیڑ کر کے رگڑ لگائیں گے, اور یدی کوئی منع کیا بس اس کا گلا کاٹ لو. ایسے وہ چھنکھلتا, یہ نہ جانے سماج کہاں جائے گا, کہاں جا رہا ہے. آج یدی ہم نہیں چیتے تو آج یہ بھارت ورش میں بھی ہم لوگوں کو رہنے کے لیے ہندوؤں کے لیے جگہ نہیں رہ جائے گی, اور بیٹھ کر کے مجیرا کیرتن بھی نہیں چلے گا, ٹھاکر جی بھی گھر کا کوئی نہیں رہے گا, ٹھاکر جی کا مندر اتیادی نہیں رہے گا. بس آپ لوگوں تک کے لیے ہے, आप लोकेशन कर करके अपना बना लीजिए, इसके बाद में आपके लड़कियां और लड़के न जाने कहां कहां और क्या करेंगे और उस समय देश की स्थिति क्या होगी कहां नहीं जाएगा। इसलिए कहते हैं कि ये सब चीजें होनी चाहिए पहले। धर्म यदि हम लोग अपने धर्म को नहीं मानेंगे, गीता गायत्री को नहीं समझेंगे, गंगा का महत्व तुलसी का महत्व नहीं समझेंगे, आजकल की स्त्रियां तुलसी जी को पानी देंगी बस आप ही लोगों तक वो परंपरा रहेगी, तुलसी जी में पानी भी नहीं देने, वो कहते बैंगन में पानी देना अच्छा है जिसमें कि कुछ फल मिल जाता है जिससे हम रसोई बनाएंगे, तुलसी से क्या मिलेगा। किंतु वो नहीं जानते हैं कि समस्त व्याधियों आजकल टीबी और कैंसर की भी बीमारियां तुलसी के पत्ते से इलाज चल रहा है, जब किसी से कुछ नहीं हुआ तो नहीं समझते हैं। एक दिन यदि विज्ञान उन्नत होगा तो कदापि कहीं बुझ समझा तब फिर लौटेंगे, ऐसे नहीं लौटेंगे ये लोग। तो इसलिए कहता है कि कंस अपने पापों से मारा गया, कृष्ण ने उसे वध नहीं किया। हम लोग मरते हैं अपने पापों की वजह से मरते हैं, दुखी होते हैं अपने कर्मों की वजह से। यदि हम लोग ठीक ठीक कर्म करें, भगवान का भजन करें और उचित रूप में सब करें तो दुख नहीं होता है। तो कंस तो मारा गया। अब नंद बाबा सोच रहे हैं, अब धीरे धीरे कृष्ण का प्रसंग आने लगा, जब कृष्ण ही नहीं तो उसको मारा। कृष्ण का प्रसंग आया, हृदय द्रवित होने लग गया। अभी तक तो बड़े ठीक से बोलते चले जा रहे थे, अब उसे रख न सके हृदय ने। बोले जी अच्छा उद्धव, तुम्हें पूछता हूं एक बात, तुम्हें पूछता हूं बतलाओ तो, अभी कृष्ण और बलदेव मथुरा में हैं या कहां हैं? हमने सुना था कि गुरु गृह में गए थे पढ़ने के लिए, हमको विश्वास नहीं है। वसुदेव इतना मूर्ख नहीं है और इतना निष्ठुर नहीं है जो कृष्ण को इतना सुकोमल बच्चा और वो भेजेगा गुरु गृह में। गुरु गृह में तो बड़ा कठोर तपस्या करना होता है, वहां तो कंडे बीन करके लाना पड़ेगा, जंगल से सिर पर लकड़ी ढो करके लानी पड़ेगी, गुरु जी के बगीचे में कुदाल चलाना पड़ेगा और एक बेला कोई सूखी रूखी कोई चीज मिल गई गुरु के घर से। राजा अपने घर से कुछ खाने के लिए नहीं भेज सकता, आजकल 500 रुपया 1000 रुपया फीस हॉस्टल का दे दो और लड़के को भर्ती करा दो और जो कुछ इच्छा घर से भेजो। पहले गुरुकुल में ऐसा नहीं था, गरीब घर का लड़का सुदामा भी उसी देश में जाएगा जैसे महाराजा के लड़के कृष्ण जी गए, खाली जूता खाली छाता नहीं रहेगा, जूता नहीं रहेगा, उनको धूप में चलना पड़ेगा, एक बार खाना पड़ेगा, सोना कम पड़ेगा, ब्रह्मचर्य के साथ में रहना पड़ेगा, कृष्ण कैसे रहे। हमने सुना था भाई उसका उपनयन हो गया है, उपनयन समझती हैं, जनेऊ उसका हो गया है। ब्राह्मण बालकों को तो 8 वर्ष की उम्र में होना चाहिए, क्षत्रिय बालकों को 12 और वैश्यों को 16 वर्ष की उम्र में जरूर बच्चे का उपनयन होना चाहिए, उसी समय गायत्री इत्यादि का मंत्र देना चाहिए। हमको तो कोई निमंत्रण नहीं गया। इतने में कुछ सोच रहे हैं, बात क्या हुई थी जिस समय कंस मारा गया, 2-4 दिन के बाद में इन्होंने सोचा कि यदि हम मथुरा में कृष्ण को रखते हैं तो ये नंद और यशोदा और सभी लोग यहाँ पर मिलने आ जाएंगे, इसलिए कुछ दिनों के लिए कृष्ण को बहुत दूर देश में भेज देना चाहिए पढ़ाने के बहाने, कह दिया। और जब हमारे लड़के को नंद बाबा ने इतना दिन तक पालन पोषण किया तो हम भी उसके बच्चे की शिक्षा की तो अच्छी तरह से दे सकते हैं, हमारा और उसके लड़के में कोई अंतर नहीं, उसी का लड़का है, किंतु हम पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं। कहाँ भेज दिया? उज्जैन में भेज दिया। किसके पास में? सांदीपनी मुनि के पास में उनको पढ़ने के लिए भेज दिया। तो जिस समय में उनका उपनयन हो रहा था, गर्गाचार्य उपनयन कर रहे थे, सिर मुंडन कर दिया गया, जनेऊ दे दिया गया, ब्राह्मण सब आए, स्वस्ति वाचन इत्यादि किया और विधिवत उनका जनेऊ उपवास ये सब दिया गया। उपनयन देने के बाद में ऐसा नियम होता है कि वो जब जिस बच्चे को दिया जाता है उपनयन, वो ब्रह्मचारी बनते हैं, और वहाँ गुरुगृह में रहते हैं और भिक्षा करके खाएंगे और भिक्षा करके गुरु जी को देंगे। तो उपनयन करने के बाद में बच्चों को तो वहां पर नहीं भेजा जा सकता था गुरु जी के घर पर, किंतु वहां पर दो चार घरों में, पांच घरों में अंततः भिक्षा करना पड़ता है। बट खड़ाऊ दे दिया गया, पीली सी झंगली उनको पहना दिया गया, वैसा दुपट्टा भी पीला दे दिया गया और कृष्ण को मुंडन इत्यादि कर करके विधिवत उनके हाथों में झोली दी गई। कृष्ण से कहा गुरु जी ने, जाओ भिक्षा मांग लाओ। भिक्षा मांगने के लिए गए, कहाँ जाएंगे कृष्ण सोच रहे मनी मन। ओ मेरी मैया ने कहा था, मैया कौन मानी, यशोदा मैया, देवकी की तो माँ कभी कहा ही नहीं, मुश्किल से सब चाहते हैं उनको माँ कहने में, मैया को खोजे। मैया ने कहा था बेटा तुम्हारा जिस दिन उपनयन होगा उस दिन तुम्हारी झोली रत्नों से भर दूंगा, अब तू गुरु जी को दे देना। मैया को खोज रहे हैं, नजर दौड़ाई कहीं भी मैया, हजारों लोग बैठे हैं, मैया बैठी है देवकी और ज्ञाति कुटुंब के सब लोग, घर की स्त्रियां सब बड़ी बूढ़ी सब लोग वहां पर बैठी हैं। मैया को खोजने में कहीं नहीं, याद आई मैया की, बस डकरने लग गए, खड़े 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 माँ मैया मैया का कर रोने लगे और कुछ दूर आगे चलते 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 क्या हो गया। देवकी जी सोच रही हैं मेरा लड़का आज मुझे माँ नहीं कह रहा और उसकी उसको यशोदा जी को अपना माँ समझ करके और उनके विरह में तड़प करके गिर पड़ा, पर ये हमारे उसके ऊपर में इतना स्नेह नहीं। दौड़ी गई सब लोग मिल करके उसे उठाया, अब भिक्षा उक्षा मांगना तो सब दूर हो गया। सबको निमंत्रण गया था किंतु ब्रज में निमंत्रण नहीं गया, क्यों? इसलिए कि यदि कृष्ण की मैया आएगी या नंद बाबा आएंगे तो वह रह नहीं सकता, फिर चला जाएगा और चला जाएगा तो फिर आएगा नहीं, सबको इसलिए निमंत्रण दिया, इनको निमंत्रण नहीं दिया। तो करें नंद बाबा जी, हमने सुना था जो गुरु गृह में गया था पढ़ने के लिए, लौट आया है और लौट आया है तो कुशल से है, और ये कुशल से कहते 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 बस अधीर होकर के जोर से विलाप करने लगे, रोने लग गए, आंखों से आंसुओं की धारा गिरने लग गई। कहने फिर थोड़ी देर के बाद में कहते हैं गला हिचकते हिचकते कह रहे हैं, कभी अपनी माँ को याद करता है? और एकदम और दिवस हो उठे, वह जो नौ जलधर वर्ण जो गोपाल है अपने से मैया की कभी याद करता है? अपने सखाओं का क्या कभी याद करता है? क्या जिन बच्चनों को बिना देखे बिना संभाले वो रहता नहीं तो उन बच्चनों की याद करता है? वो गोवर्धन की कुछ से याद आती है? इस तरह से सब कुछ पूछने लग गए। कहते हैं कि वो वृंदा के वन में कभी कभी खेलते खेलते बच्चों के साथ में खाना पीना भूल जाता, रोहिणी जी बुलाने जाती नहीं आता, छिप जाता इधर का उधर भगने लगे। मैया फिर जाती बुलाने के लिए यशोदा, और किसी प्रकार से उसे पकड़ करके आग ले करके आती थी, अपनी मैया को उस खेला को और उस गोकुल को ब्रह्मांड घाट को, क्या वो सब कुछ भूल गया? अपि स्मरतना कृष्णो मातरम सुहदन सखीं गोपान भजन च आत्मनाथम गावो वृंदावनम गिरिम। क्या वो वृंदावन को यमुना को और अपने सुहृद सखाओं को बछड़ों को गायों को सबको वो भूल गया? कभी स्मरण करता है भूल करके? क्या कभी वो ये तो नहीं यही कभी कहता है अरे नंद बाबा हमें प्यार नहीं करते थे, अब तो मुझे वसुदेव बाबा खूब प्यार करते हैं, इस रूप में भी क्या हमारा स्मरण करता है? डकर टकर करके रोने लग गए, इतने जोर से रोने लगे कि गला बंद हो गया, आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और एकदम वो चुप हो गए, केवल हिचकी चलने लग गई। नंद बाबा की बातों को सुन करके उद्धव जी आश्चर्यचकित होकर के देखने, सोचने इनका ढारस में कैसे बंधाऊं, विचार कर रहे हैं। कोई किसी के पास में ढारस सांत्वना देने के लिए जाता है तो उसे यदि वो रो रहा है किसी कारण से तो कहेगा रोइए मत, जरा चुप रहिए, अरे धैर्य तो धारण कीजिए। उद्धव जी तो बड़े शास्त्रविद थे, जब देखा ये बड़े जोरों से रो रहे हैं तो सोचा जी उनसे कहूंगी आप रोइए मत, किंतु कहते हैं कि मैं कैसे कहूं रोइए मत। कोई का लड़का मर गया, लड़के के लिए रोता है, या लड़का कहीं भग करके चला गया उसके लिए माँ रो रही है, पिताजी रो रहे हैं, कहीं अरे उस बच्चे के लिए क्या रो रहे हैं, ये संसार की ऐसी ही रीति पीति है। कोई किसी का नहीं है, न भाई है न बंधु है, न क्या उसके लिए रोना है, भगवान का स्मरण करो, यही तो कहेगा, इसके लिए संतना यही देगा। तो सोच रहे हैं उद्धव जी, मैं कहूं जो रो मत, किंतु शास्त्र क्या कहते हैं, यदि एक बुंद भी किसी को भगवान के लिए रोना आ गया, आंखों में पानी आ गया और हृदय द्रवित हो गया तो उसका जीवन धन्य है। अपनी संपत्ति के लिए, अपने दुख के लिए तो सभी रोते हैं, भगवान के लिए यदि रोना आ जाए ना, मीराबाई को हम लोग किस लिए इतना उन्नत कहते हैं, इसलिए कि भगवान के लिए रोया। गोपियों को किस लिए कहते हैं धन्य, इसलिए कि भगवान के लिए उन्होंने रोया। हम रोने के लिए चेष्टा करते हैं कि भगवान के लिए रोए, अभी हमको कोई मार देगा अपमान कर देगा तो हमारे आंखों से आंसू आ जाएगा, भगवान के लिए आएगा। जो बड़ा भारी सौभाग्यवान होगा उसी के आंखों में भगवान के लिए अश्रु आएगा। तो कहते हैं कि आज तो नंद बाबा जैसा सौभाग्यवान जगत में कोई है ही नहीं, क्योंकि इनके आंखों में कृष्ण के लिए आंसू आ रहे हैं। अरे भाई कृष्ण है कौन, कृष्ण तो यही तो स्वयं भगवान है, तो भगवान के लिए यदि रो रहे हैं तो इनको कैसे कहूंगी रोइए मत। तो क्या कहूं, नंद बाबा आप खूब फूट फूट करके रोइए, ऐसा कहूं तो सांत्वना देना होगा, ऐसा भी तो कहा नहीं जाएगा, इसलिए क्या कहूं, कहूं जो रोवो तो भी दोष, और यदि कहूं जो रो मत तो भी दोष। अब मैं क्या, उद्धव जी शास्त्रवेत्ता है, बुद्धि में कुछ आ नहीं रहा, इसलिए कुछ भी कहने में असमर्थ हो रहे हैं, हाँ भी नहीं कहते, नहीं भी कहते नहीं, रो ये भी नहीं कह सकते, रो मत ये भी नहीं कह सकते। उद्धव जी ने अंत में विचार किया, उद्धव जी बड़े बुद्धिमान हैं, उन्होंने विचार करके शास्त्रों से देखा ये नंद बाबा बड़े सौभाग्यवान है, आज कृष्ण के लिए रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, हृदय में विरह है। कहा जी आपके समान और जगत में, आपके समान और यशोदा मैया के समान जगत में और कोई सौभाग्यवान नहीं है, भाव ये था कि कृष्ण ही आपके पुत्र हैं, और उस कृष्ण के लिए जब इतना आपके अंदर में प्रेम है और उस प्रेम से आप रो रहे हो तो आपके समान और कोई सौभाग्यवान नहीं है। अब बात भी ये ठीक है, नंद बाबा ने सुना, सुन करके और विरह उनके हृदय में उठा और रोते रोते बोले बेटा हमने सोचा था कि तुम कृष्ण के साथ में रहते हो और तुम्हारे अंदर में कुछ बुद्धि आई होगी, किंतु देखते हैं कि तुम्हारे अंदर में बुद्धि तनिक भी नहीं आई, तू ऐसा का वैसा ही बना रहा मूर्ख है? तुम हमको सौभाग्यवान कहता है, ये तो तुमने बड़ी गलती, आज हमारा लड़का हमें छोड़ करके चला गया, हम लड़के के लिए विरह में तड़प रहे हैं, और एक ऐसा कौन सा मूर्ख होगा जो हमारा लड़का कैसा, जगत में ऐसा लड़का नहीं होता, इतना सुंदर, इतना मधुर, इतना गुणी, सब प्रकार से योग्य, और हमें वो छोड़ करके चला गया और हम उसको बिना तड़प रहे हैं, और तू कहता है जैसे तू बड़ा भारी सौभाग्य है, तो हमारा जैसा दुर्भागा जगत में और कौन जन्मेगा जो कि नारायण की समान गुणी, और आज हमें छोड़ करके वो चला गया। ये कहकर तो बड़े जोर से रोने लगे, तुमको बुद्धि नहीं, आज तुम हमारे भाई का लड़का इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा, आज कोई दूसरा होता तो मैं उसका मुख भी देखता कि नहीं देखता। तू ऐसे हमको सौभाग्यवान कहता है, बात भी ऐसी है। उद्धव जी सोचने लगे, मैं बहुत बड़ी भारी गलती किया, हमको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। फिर सोचने लगे कि मैंने गलती क्या की। उद्धव जी ने विचार किया, मैंने तो गलती तो कुछ नहीं की। समस्त शास्त्र ऐसा ही कहते हैं, जो भगवान का भजन करता है वही सौभाग्यवान है, और ये भगवान के लिए ही रो रहे हैं। और मैंने तो यही कहा, जैसे आप बड़े सौभाग्य हैं, यशोदा जी बड़ी सौभाग्यवती हैं, ये भगवान के लिए रो रहे हैं। मैंने बात तो कोई गलती नहीं की, किंतु गलती हो गई क्योंकि ये रो रहे हैं और इनके हृदय में वेदना पहुंची है, इसी से मुझको ये कहना नहीं चाहिए। अब क्या करें? सोचने लगे, विचार करने लगे वो। अपि आयास्यति गोविंद स्वजनान सकृद इच्छुतम। नंद बाबा की सराहा नहीं है, कहते हैं ओहो हम लोग किस लिए जीवित हो रहे हैं? इसलिए जीवित हैं कि उसने कहा था कि हम आज न कल न परसों हम आ जाएंगे, किंतु आज तक वो आया नहीं। हम लोग तो मर जाते और हम लोग मर भी जाते, किंतु प्राण इसलिए रखे हैं कि कल जब भी आएगा तो देखेगा कि हम लोग मर गए हैं तो और दुखी हो जाएगा, इसलिए किसी प्रकार से हम लोग प्राण धारण किए हुए हैं। उसने कभी कहा कि हम कभी आएंगे, इसीलिए हम लोग जीवित आज हैं। ये कहकर के नंद जी कहते हैं, तरही दक्षामि तदवक्तम सुनसंग सुस्मित एक क्षणम। कहने लगे कि कृष्ण कैसा लड़का था, पुतना आई और पुतना से ब्रज की उन्होंने रक्षा की। अधासुर बकासुर दावाग्नि वन में आग लगी और देखते देखते आग को पी गया, और आग उसके लिए कैसे बन गई, सुशीतल बर्फ के समान बन गई। सब प्रकार से उसने ब्रज की रक्षा की। आज हम उसके विरह में तड़प रहे हैं, क्या वो आएगा नहीं? ऐसा कह करके वो खूब जोरों से डकार बकार करके रोने लग गए। उद्धव जी बड़े प्रवीण हैं, श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन कर रहे हैं, शास्त्र जानने वाले पंडित हैं। ये देख रहे हैं कि कृष्ण के प्रति इनका कितना गंभीर प्रेम है, इसलिए इनके प्रति खूब श्रद्धा हो रही है, किंतु उनके साथ में रो नहीं रहे। वो नंद बाबा के समान उनका हृदय नहीं था जो वात्सल्य रस का आस्वादन करके उनके साथ साथ में रोए, क्योंकि वो मथुरा थे, मथुरा से आए हैं। एक तरफ में नंद बाबा ब्रज हैं और उद्धव जी ब्रज के मथुरा के प्रतीक हैं, दोनों आमने सामने बैठे हैं। उद्धव जी कृष्ण को क्या समझते हैं? भगवान। और नंद बाबा कृष्ण को क्या समझते हैं? अपना पुत्र। पुत्र के अतिरिक्त कभी भी भगवत्ता का ज्ञान नहीं है। नंद बाबा को दुख किस लिए है ये नहीं समझते, बल्कि कृष्ण के प्रति उनकी इतनी गंभीर प्रेम और श्रद्धा है और उनके विरह में रो रहे हैं, इसलिए उनके प्रति तो खूब गंभीर श्रद्धा हुई। बड़े सौभाग्य है ये, सौभाग्यवान है ये भाव तो आया। किंतु ये नहीं, उनके समान में दुखी हो जाना कृष्ण के लिए ये उनके लिए संभवपर नहीं हुआ, क्योंकि कृष्ण को सब समय समझते हैं कि ये भगवान है। कृष्ण को भगवान जान करके उनके प्रति भक्ति होती है, उसमें प्रेम का अभाव थोड़ा सा रहता है, वो प्रेम नहीं होता है। और उनको अपना प्रियतम, अपना पुत्र और अपना सखा मान करके उनके प्रति जो भक्ति होती है, प्रेम होता है, उसमें भगवत्ता का ज्ञान नहीं होता। वो ठीक प्रेम में एकदम ब्रज का भाव उसमें लेकर के आता है और उसके प्रेम में बहुत गंभीर भाव होता है। उद्धव जी के हृदय में ये चीजें नहीं आ रही। ये कृष्ण के प्रति नंद बाबा का अनुराग कैसा है ये संभव पर नहीं हुआ। इस प्रकार से रोते रोते और बातचीत करते 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 सारी की रात कट गई। सवेरा हुआ, 4 बज गया। जब 4 बज गया, उद्धव जी नंद बाबा को प्रणाम किए। नंद बाबा भी स्नान करने के लिए चल दिए, ये भी स्नान करने के लिए चले। स्नान करने के लिए कृष्ण कुंड पास ही है नंदगांव में, कृष्ण कुंड में स्नान करने गए। स्नान किया, कुछ सवेरा होने लग गया, इतने में देखा उसी के पास में उद्धव क्यारी, आज उसका नाम है, पहले वो कदम्ब क्यारी उसका नाम था। देखा जी वहां पर कुछ स्त्रियों की हलचलें हो रही हैं। भीतर में प्रवेश किया, बड़ा सघन कुंज, उसमें लाखों गोपियां विरह में मग्न हैं, सूख करके काटा हो गई हैं, शायद कपड़े नहीं बदले हों, जब से कृष्ण से गए हैं तब से वहीं पर हैं वो, बड़ी प्रेम में बेसुध भी भर। उद्धव जी ने उनको दंडवत प्रणाम किया, बातचीत कुछ होने लगी। एक कहती है कि भाई देखो, नंद के दरवाजे पर एक सोने का रथ है, इसी में हमने देखा था अपूर आया था, और वही सोने का रथ आया हुआ है, वो रथ क्यों आया? अक्रूर फिर आ गया? अक्रूर ही तो नहीं है? जरा दूर से जब उद्धव को देख करके कह रही है, किस लिए आया? अरे उसको लेकर के गया, कंस मारा गया, और फिर आने की जब कृष्ण जब गए तो आप कुछ ले, क्या ले जाने की बात है? एक सचिव तुम जानती नहीं, कृष्ण मारा गया है, कंस मारा गया है, और उसका अब श्राद्ध होने वाला है, श्राद्ध में पिंड दिए जाते हैं, पिंड वहां उसको मथुरा में नहीं मिला, तो वहां पर उग्रसेन ने कहा होगा या अक्रूर ने सोचा होगा, कृष्ण के विरह में वहां पर लाखों गोपियां मरी पड़ी होंगी, उनके हृदय से उनका हृदय पिंड निकाल करके ले आओ, शायद उसे हृदय पिंड गोपियों का लेने के लिए ये अक्रूर फिर से आया है, उसके लिए इसी से श्राद्ध होगा। अक्रूर जी तो बड़े भारी लज्जित हो गए, सिर नीचा हो गया। एक आती है सखी, ये रथ की, ये सोने के रथ पर किस लिए आया? तू जानती नहीं है, अब तो वो द्वारकाधीश हो गया है ना, मथुरेश हो गया है, राजगद्दी पर बैठा है, अब सोने का सिंहासन पर बैठता है, सोने का राज मुकुट पहनता होगा, लाखों उसके सेवक परिकर हैं, बंसी हाथ में नहीं, अब परिचय देता है, मैं जदुराज हूं, मैं देवकी पुत्र हूं और वसुदेव पुत्र हूं, और अपने को क्षत्रिय समझता है, इसलिए वो अपनी माँ को दिखलाना चाहता है और हम लोगों को, ये मैया तेरा लड़का अब कैसा है, मथुरा का गद्दी पर बैठा हुआ है, अब वो गोबर बिनने वाला और गाय को चराने वाला चरवाहा केवल साधारण नहीं है, ये चकमकी देखने के लिए वो सोने के रथ पर चढ़ा है, दिखलाता है कि मैं अब कैसा ऐश्वर्यवान हो गया हूँ। मैया को तो दिखलाना ही चाहिए ना, पिता को, गरीब घर का लड़का वहां पर राजा बन गया तो दिखलाने के लिए आया। तो अक्रूर जी कहते मैंने बड़ा भारी अन्याय किया, रथ में पहले मैंने रथ पर नहीं चढ़ने के लिए मना किया था, किंतु कृष्ण ने मुझे रथ पर बैठा दिया, रथ पर चढ़ करके आया। एक कहती है गोपी, ओहो देखने सुनने में तो श्याम ही कैसा लगता है, किंतु श्याम नहीं है, अक्रूर जी का रंग कैसा था? श्यामला, कृष्ण के समान, और वैसे उद्धव जी का, और उनका पीताम्बर वैसा ही, सब कुछ बनमाला भी वही, देखने में श्याम जैसा किंतु श्याम नहीं, ये कौन है, किस लिए आया? ओ बड़े श्रृंगार करके आया है, मालूम होता है उसका दूत ही है, वैसा ही काला है और ठीक वैसा ही बना हुआ है। एक कहता है जैसे वैसा ही नहीं भाई, हमें तो एक सखी कहती है कि हमें तो ऐसा गंध से मालूम, हमारी नाक कभी भी भूल नहीं कर सकती, ये कृष्ण के अंगों का गंध जैसा लग रहा है, मुझे मालूम होता है कृष्ण के अंगों का उतरा हुआ कपड़ा और ये सब पहना है, अन्यथा ये दूसरा नहीं है, कृष्ण के अंगों का सुगंध से वो समझ जाती थी ये कृष्ण के अंगों का गंध है। तो ये फिर ऐसा कैसे आया, सिर पर मुकुट पहन करके आया है, वो हमें दिखलाने के लिए आया है। उद्धव जी बड़े जर्जरित हो रहे हैं, पृथ्वी फट जाए, मैं उसमें समा जाऊं। हमको इस बेस में नहीं आना चाहिए था, हमको तो दीनहीन होकर के ऐसे बेस में यहां पर आना चाहिए था। उद्धव जी बड़े लज्जित हो रहे। अंत में पूछा ये तुम कौन हो, तो उन्होंने वही उत्तर दिया, आप लोगों के विरह में जो तड़प रहे हैं कालिंदी के किनारे, आप लोगों के साथ में जो विहार करते थे और जिसको अक्रूर में आप लोगों से छिन करके और मथुरा ले रहे, जो वहां पर आपके विरह में तड़पते हैं, उन्हीं का मैं एक संदेश बाप दूत मात्र हूं, मेरा नाम उद्धव है। गोपियों ने दया करके उनको उपस्थित किया कहां, जहां पर श्रीमती राधिका जी अंतर प्रदेश में थी, कमल के फूल ताजे ताजे रखे गए थे और उसी के सेज पर सुई हुई है, इतनी दुबली पतली हो गई है केवल श्वास पर श्वास चल रहा है, सेज पर एकदम मिल करके सेज ही जैसी हो गई है, सोने की पुतली जैसी हो गई है, आंखों से आंसुओं की धारा और कभी कभी प्रियतम वत्स यही शब्द निकल रहे हैं और रो रही है, विलाप कर रही है, जी रही है कि मर रही है भी कोई ठीक नहीं, रुई की फाये देकर के उनका श्वास पर श्वास देख रहे हैं कि ये जीवित हैं कि या क्या करते हैं। जगत में उनका जैसा कृष्ण के लिए विरही और कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। कृष्ण के प्रेम में जैसे मिलन में सुखी होती हैं, ऐसे दुखी भी हो जाती हैं, इसका दूसरा कोई उदाहरण नहीं। उद्धव जी को देखा, देखते ही एक भ्रमर कहीं से आया उड़ता हुआ और राधा जी के चरण कमलों को गुलाब कमल का फूल समझ करके वहीं पर मंडराने लगा, झंकार करने लगा। राधा जी ने देखा ये उसका दूत मालूम होता है, भौरे को देख करके काला वो भी काला ये भी, बार बार चरण पकड़ता है वो भी हमारे चरण पकड़ते। राधा जी प्रलाप करने लग गई। उद्धव जी को देखा कृष्ण के समान ही रूप, यदि वो पेड़ होता कमाल का तो पकड़ लेती है कृष्ण कृष्ण, किंतु उद्धव के रूप में उनके समान होने पर भी उनको पकड़ा नहीं, धर्म का उल्टा उनका नहीं हो सकता, विपरीत काम नहीं कर सकते। अब उसी भ्रमर को देख करके उनका दुख समझ करके और के साथ में वार्तालाप कर ली, करने लग गई। मधुप कित बंधो मास्क संग्रीस पत्नी, मधु तू कहां से आया, मधुपुरी से मधु पान करके आया है, मधु मैंने मधु मधु पी करके मत वाले होते थे, तो तुम पी करके मदिरा पी करके आया, तुम मदिरा पी करके यहाँ पर मत आओ, हमें स्पर्श हमारा चरण मत करो। इस प्रकार से उनसे वार्तालाप करने लग गया, करने लगी। इसको कल हम अब जो राधिका जी के साथ में उन्होंने प्रलाप किया प्रेम में और विरह में, उसका कल हम संवाद हम बतलाएंगे। आज समय हो गया, आज यही तक समाप्त।
कृष्णाय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदालयै, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय सदभक्ताय नमो नमः। भक्त्याविहीना परादलक्षै क्षिप्ताश्च कामादितरंग मध्यै, कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। यत किंकरीषु बहुश खलु काकुवानि, नित्यं परस्य पुरुषस्य शिखण्डमौले, यस्या कदा रसनिधे त्रिशुभानुजाय, ततके निकुञ्ज भवनङ्गनमर्जनीष्याम्। तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे, सङ्गे माम चरणान्तिके। यं प्रव्रजन्तमनुपेतपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेतु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि।
उद्धव
संवाद। कल हमने उद्धव संवाद से नंद बाबा और उद्धव जी के बीच वार्तालाप में कुछ मैंने बतलाया था। उद्धव जी ने नंद बाबा को और जसोदा मैया को अत्यंत सौभाग्यशाली बतलाया। बात कोई गलती नहीं, भला नंद बाबा जसोदा जी से सौभाग्यवान कौन होगा। बात उन्होंने ठीक ही कहा था, शास्त्र की बात, किंतु बात यहाँ पर उल्टी हो गई। नंद बाबा सुनकर बड़े दुखी हो गए। उन्होंने कहा, तुम अभी छोटा सा बच्चा, बुद्धि भी तुम्हारी अभी बच्चे की ही बुद्धि रही। मैं समझता था कृष्ण के संग में रहकर तुम्हें कुछ अकल आ गई है, किंतु तुम्हें कुछ अकल नहीं आई। तुम बात करना तो कुछ जानता है, किंतु किससे क्या कैसी बातें करनी चाहिए तुम्हें इसका ज्ञान नहीं। उद्धव जी विचार कर रहे हैं, हमने तो कोई गलती बात की नहीं। कृष्ण जिनके प्राण है, कृष्ण स्वयं भगवान है। लोग यदि संसार को छोड़कर भगवान का भजन करते हैं तो इससे बड़ा सौभाग्यवान कौन होगा। इसलिए मैंने तो कहा है ये बात ठीक, किंतु यह बात नंद बाबा के अंतर में लग गई और वो बड़े दुखी होकर के रोने से लग गए। नंद बाबा कहते हैं कि तुम हमारे अंदर की बातें नहीं जानता। अरे वो भगवान तुमको कह रहा है, उन्हें कृष्ण को, हमारे लाला को नारायण कहता है, भगवान कहता है। भाई कुछ तो प्रमाण तो चाहिए। हम नास्तिक नहीं हैं, हम आस्तिक हैं। भगवान को सर्वव्यापी मानते हैं और विश्व का भरण पोषण वही करता है। उसी से सबका जन्म होता है और अंत में सभी लोग उसी के द्वारा पालित पोषित होते हैं। मैं भी जानता हूं कि भगवान का कोई माता पिता नहीं, वही सबके माता पिता हैं, ये भी जानता हूं। और वही नारायण हमारे यहाँ शालग्राम के रूप में है। मैं उनकी पूजा भी करता हूँ, हमारी गृहिणी भी उनकी पूजा करती है। किंतु हमारा वो बच्चा कैसे नारायण हो गया। भगवान तो सत्य संकल्प होते हैं, सत्यवाक होते हैं और कभी भी उनको मोह नहीं होता। किंतु हम तो अपने घर में देखते हैं कृष्ण में भगवत्ता का कौन सा लक्षण है। दिन में 10 बार खाता है, थोड़ी सी कोई बात होने में रोने लगता है। अभी अवशांत रहे, चुपचाप सुनिए मेरी बात, जो आता है अवशांत। इसमें भगवत्ता का लक्षण क्या है तुम बतला सकते हो। इसको तो मोह 24 घंटा रहता है, अपनी मैया से मोह है। अरे ब्रह्म किसी को अपना माता और पिता किसको कहता है। ब्रह्म तो सबका आराध्य होता है। मैं जब चलता हूँ जंगल में, वन में गैया चराने, तो मेरी जूती सिर पर ले लेता है और पीछे पीछे चलता है। ये ब्रह्म का काम है, इसको को भगवान कहते हैं। और मैया को थोड़ा सा देरे हुए मक्खन रोटी देने में तो दांत कड़कड़ाने लगता है, भौंहें तन जाती है, वो रूठ जाता है। ये सब भगवान का लक्षण है। कभी मट्टी खा लिया, कभी कुछ किया खा लिया, ये सब भगवान का, भगवत्ता का लक्षण है। मैं तो उसे भगवान नहीं कहता, वो कभी भी भगवान नहीं।
अरे मैं तो प्रतिदिन घर में ही रहता हूँ और उसको ये सब बातें मैं देखता हूँ, तो थोड़ी सी बात नहीं सुनक जाता है तब। हाँ उसमें गुण बहुत है, भगवान की असीम कृपा है कि हमारे ऐसा पुत्र रत्न हुआ है, इसलिए भाग्य सौभाग्यवान तो थे। किंतु उसने देखा कि मैं उसके प्रेम का युक्त नहीं हूं, योग्य नहीं, इसलिए हमको छोड़कर के, मैया को छोड़कर के चला गया। अरे राम ही तो एकमात्र पुत्र थे और दशरथ एकमात्र पिता थे। दशरथ ने क्या किया, राम के विषय में बस राम राम तीन बार बोले और चले गए सुरधाम को, रह न सके। और इतना दिन हो गया हमें और मैं मर नहीं गया, तो प्रेम कहां उस पुत्र में। न प्रेम गंधस्य दरापि मे हरौ सौभाग्य करंदानि सौभाग्य भरम प्रकाशितुम बंसी विलास्यानन अवलोकनम बिना विभात्म जब प्राण पतंग कान वृथा। महाप्रभु जी कृष्ण के प्रेम में विरह में रोते थे, तड़पता कर रोते हैं, कहां मेरा प्राण धन, मेरा हृदय फट नहीं जाता, ऐसा विलाप करते थे जो पशु पक्षी तक रोने लगते थे। किसी ने कहा जिसे, आप ऐसा क्यों करते हैं, आप में प्रेम नहीं है, आप तो प्रेम की मूर्ति हैं। उन्होंने कहा यदि मुझे प्रेम का गंध तनिक भी होता तो बिना पानी के मछली कितनी देर रहती है, मछली को पानी से निकाल दो छटपट करती हुई तत्क्षणात् प्राण प्रत्याग करती। और मुझे कृष्ण से प्रेम है और कृष्ण को इतने दिन हो गए मथुरा गए और मेरे प्राण नहीं निकल गए, तो मैं पिता कैसा रहा, प्रेम कैसा रहा, मैं मर नहीं जाता, केवल एक